आपके लिए लेकर आए हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रोग्राम, तो उसमें आज हम जो आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस और हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे आपदा और उनके प्रबंधन यानी डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट का। ये लेसन नंबर 12 है और मॉड्यूल 4 जो कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज से है, तो इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। और हमको सबको मालूम है कि प्रकृति में हम देखते हैं तो आपदाएं आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं और इनके कारण काफी जन धन की हानि होती है। और ये जो आपदाएं हैं वो बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है, चक्रवात हो सकता है, इस फॉर्म में है, ये की प्रमुख मानी है। तो ये जरूरी हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इन प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोकने का संभव हो सके तो रोकने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ इस बार पर ध्यान देना चाहिए कि इन आपदाओं को मिनिमाइज करने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं। और इसका समय इसमें हम बात करेंगे आपदा क्या होती है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है, और आपदा में जैसे हम आपदा कई तरह की हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और मैनमेड डिजास्टर्स भी होते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स की ही बात करेंगे जिसमें हम बाढ़ लेंगे, तूफान है यानी चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्रकृति में जो प्राकृतिक संतुलन क्यों बनाए रखने की जरूरत होती है। जिसकी हम कभी मालूम है कि जीवधारियों को अपना जीवन यापन करने के लिए और कुशलता से चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, और प्रकृति में ये प्राकृतिक संसाधन बहुत असीमित हैं, बहुत हैं, लेकिन प्रकृति की भी जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको जब हम उपयोग करते हैं तो ये जो संसाधन है इसका नियंत्रण जो है, उपलब्ध संसाधनों का नियंत्रण भी प्रकृति के पास ही होता है कि जितने हम उनसे लेते हैं उतने ही वो रिप्लेनिश यानी पुनः भर जाते हैं, प्रकृति में पुनः भर जाते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और ये कह सकते हैं कि प्रकृति का उन सभी संसाधनों पर अपना अधिकार और नियंत्रण रहता है। तो प्रकृति में इस तरह से एक संतुलन बना रहता है कि कुछ हमने लिया और वो किसी दूसरे फॉर्म में उसी वापस पृथ्वी को मिल जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं और इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। और इसी में शामिल हो जाते हैं हमारे फूड चेन, फूड वेब और नेचुरल जो घटनाएं हैं वो इसको संतुलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ सा गया है, और इसका जो मूलभूत कारण है वो हमें सबको पता है कि वो मानवीय क्रियाकलाप है उन्हीं पर के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, और जिसके कारण ही ये प्राकृतिक असंतुलन जो हमें देखने को मिलता है, और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और अब जब तब देखें तो हम प्राकृतिक हमारी आपदाएं भी आती रहती हैं। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राकृतिक ये जो आपदाएं हैं उनके लिए वो प्रोन एरिया है, यानी बहुत ही संभावित क्षेत्र है। यहाँ पर अक्सर तूफान है, आपका बाढ़ है, भूकंप है, ये सब आते ही रहते हैं, जल्दी जल्दी आते रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हर साल हमें इन तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हमारा जो मौसम का चक्र है वो बदलता है। तो कभी कभी ये प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक रूप से आती हैं और कभी कभी ये मानव निर्मित भी होती हैं, यानी कि मानव की छोटी सी गलती के कारण भी एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि पर्यावरण का अवक्रमण भी बढ़ता है, कि घटनाएं बढ़ जाती हैं, और जो आपदाएं आती हैं तो उससे क्या होता है, टोपोग्राफी है यानी स्थलाकृति है वो भी परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए असुरक्षा भी बढ़ जाती है। और अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में आते हैं तो कुछ सालों में अगर देखें तो कई सारी आपदाओं का भारत में सामना करना पड़ा है। जैसे 1988 में की अगर बात करें तो जो फ्लड प्रोन एरिया था वो 11.2% था, 98 में वो 37% हो गया, लेकिन और आज अगर हम आंकड़े देखें तो 33.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि हमारी फ्लड प्रोन एरिया में परिवर्तित हो गई। और फ्लड प्रोन एरिया के जो भारतीय स्टेट हैं वो उनमें शामिल होते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, असम, बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। तो इस ये इंटेंस मानसून, इसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है फ्रॉम द साउथ वेस्ट कॉजेस, जो नदियां हैं उनके द्वारा, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गंडक है, जब इसमें पानी बढ़ जाता है बारिश के मौसम में या तो ये बाढ़ की शक्ल हो जाती है। और अगर हम रिसेंटली अगर कुछ आपदाओं की बात करें तो जैसे 1993 में अर्थक्वेक आया था लातूर महाराष्ट्र में, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर था। 1990 में उड़ीसा में साइक्लोन आया था जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। 2001 में अर्थक्वेक आया था भुज गुजरात में, जो कि हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद सुनामी आई जिसने कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के काफ़ी कोस्टल एरियाओं को क्षति पहुंचाई थी। और 2012 की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में जो क्लाउड बस्ट यानी बादल फटा था, और कई कई फॉरेस्ट फायर भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है, प्राकृतिक आपदाएँ जो हैं उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। और जो भौतिक सुरक्षा है वो भी, विशेषकर जहाँ असुरक्षा अधिक होती है, तो इन बाधाओं के खतरे के कारण जो खतरे में पड़ जाती है हमारी प्राकृतिक आपदाएं। और इनको हम प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं, इन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ अगर हम प्रिकॉशंस लें तो इनसे बचाव ज़रूर कर सकते हैं। जैसे अगर सही समय पर अगर उचित भविष्यवाणी की जाए और या फिर कोई प्रभावशाली बचाव साधनों की उचित तैयारी करके भी हम इन खतरों को टाल सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम जो प्रिकॉशंस हैं या जो भी भविष्यवाणी की जा रही है उसको अगर सही समय पर और सही तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक हम जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले ही उड़ीसा में और महाराष्ट्र में तूफान आ रहा था, तो उसमें जब प्रायर भविष्य फोकस था कि इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ के तट के लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था और वो फिर जो आपदा बहुत सीवियर हो सकती थी वो थोड़े में हो गया। लेकिन वेस्ट बंगाल का अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसको हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की जिस स्थिति को देश आज देख रहा है तो उसे में ध्यान में रखने पर ही, उसको ध्यान में रखते हुए, जो हमारी टोपोग्राफी उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी और योजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं, करनी होंगी, तभी हम इन आपदाओं से बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपदाओं के प्रकार की। तो दो तरह की, जैसे हमने बात की, प्राकृतिक हो सकती है और मानव निर्मित हो सकती है। प्राकृतिक में हमारा भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, चक्रवात है, ये शामिल होते हैं। और मानव निर्मित में जैसे आग हो गई, कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे रेल रोड या एयर एक्सीडेंट अगर हो जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है, पेंडेमिक यानी कोई महामारी हो सकती है, जैसे कि आजकल हम सारा वैश्विक रूप से अगर देखें तो सारे विश्व के काफ़ी हिस्सों में COVID-19 का खतरा चल रहा है। तो दोनों अगर हम ये देखें, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव, दोनों में ही मानव जीवन की क्षति होती है, आपके लाइवलीहुड को के साधनों में कमी आती है, संपत्ति और पर्यावरण का अपक्रमण कॉमन ही है, यानी कोई भी आपदा आती है ये सबसे हमें गुजरना पड़ता है। और आपदाओं से समाज के सामान्य क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो हम देख रहे हैं, और इसका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म भी दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की, यानी कि ऐसी आपदाएं जो प्रकृति में खुद से पैदा होती हैं और इसमें मनुष्य का कुछ हाथ होता है या उसके वश में नहीं होता है, लेकिन ये आपदाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम बाढ़ की बात करते हैं। तो बाढ़ क्या, कि नदी या कोई जल स्रोत है या जलाशय है, उसमें अगर बहुत अधिक मात्रा में जल आ जाए, अचानक से पानी आ जाता है और अस्थायी रूप से क्या होता है कि आसपास का जो एरिया है वो जलमग्न हो जाता है, इसीलिए उसको हम बाढ़ कहते हैं। इसके रीज़न क्या है, बहुत तेज बारिश हो रही होगी, तेज हवाएं चले हैं, चक्रवात आए, सुनामी आए, बर्फ़ पिघलती है अगर पहाड़ों पर, या फिर कोई बांध की दीवार में दरार आ जाती है, बांध टूट जाता है, उसके कारण ये बाढ़ आ जाती है। बाढ़ धीरे धीरे भी आ सकती है और अचानक से बहुत तेज अतिवृष्टि या जल भंडार के कारण भी बहुत जल्दी से पानी अचानक क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। और इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि जो नदी और तालाबों की गहराई कम हो जाती है, उसमें कीचड़ या गाद जमा हो जाती है, जिसके कारण कि पानी को नीचे जाने के लिए स्पेस नहीं मिलता है और इस तरह से ही बाढ़ की घटनाएं हो जाती हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसमें घायल हो सकते हैं, चोट लग सकती है, व्यक्ति डूब सकता है, गंभीर और महामारी जैसे बाढ़ का पानी चला जाता है उसके बाद में भी, और जो दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे डायरिया हो सकता है, कोई हैजा हो सकता है, पीलिया या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और क्योंकि बाढ़ में मनुष्य के साथ में पशु पक्षी जो भी उसमें आते हैं वो उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये उस क्षेत्र की प्रभावित क्षेत्र की सामान्य सी समस्याएं हो जाती हैं। और बाढ़ के समय ना जो कुएं हैं या जो वाटर बॉडी जिनसे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, पेयजल मिलता है, वो भी उसमें जलमग्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई अफेक्टेड होती है, और जब अफेक्टेड होती है तो हमें पानी की कमी हो जाती है, और कई बार इतनी ज़्यादा सीवियरिटी होती है कि पानी वहाँ सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कई बार मजबूर होना पड़ता है उसी कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करने के लिए, जिसके फलस्वरूप कई सारे गंभीर रोग भी हो जाते हैं। बाढ़ में इमारतों को भी क्षति होती है, कई बार देखते हैं कि जो घर हैं मिट्टी के घर हैं या फिर जिन घरों की नींव कमज़ोर होती है उनको भी उनका है वो भी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सड़क है, रेल की पटरियां हैं, आपके बांध हैं, स्मारक हैं, फसल हैं, और पशुओं को भी काफ़ी हानि हो जाती है, और बड़े बड़े पेड़ भी बाढ़ में पाके पानी से उखड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है और वहाँ पर सॉइल इरोजन भी हो जाता है। तो हमने बात कर ली कि माल और सामान और सामग्री की क्षति हो जाती है, और इनके साथ साथ अपने बिजली के तार हैं या टेलीकॉम के जो भी वायर वगैरह चल रहे हैं, फर्नीचर है, उपकरण है बिजली के, वो भी खराब पानी में, जब पानी में डूबते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर केरला के देखें तो काफ़ी उधर भी इस तरह से पानी आ गया था काफ़ी बार, तो ये सब नुकसान वहाँ पर भी हुए थे। और कोस्टल एरिया में अगर बाढ़ आती है तो जो नौकाएं हैं जिससे मछली पकड़ते हैं वो भी खराब हो जाती हैं। और हमने वैल्यूएबल चीज़ की बात करी थी कि बहुत सारी वस्तु क्षति हो जाती है, और जैसे संचार के साधन है, सीवरेज का जो व्यवस्था है वो खराब हो जाती है, रेल रोड में पानी आता है तो हमारा परिवहन भी डिस्टर्ब होता है, पानी अगर खेतों में आ जा रहा है तो वहाँ पर भी खेतों से फसल नष्ट हो जाती है, और अगर बाढ़ का पानी अगर स्टोरेज वाले एरिया में चला जाए, भंडारित अनाज के साथ साथ वहाँ रखी हुई जो फसल है उसको भी ख़राब कर देता है, और बाढ़ के पानी से जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को भी असर पड़ता है, और अगर खेतों के ऊपर समुद्र का पानी आ जाता है तो समुद्र का पानी जो है खारा होता है, खारा होने से वो पानी जब उतर जाता है तो लेकिन वो खारापन उसमें रह जाता है, तो ये जो उपजाऊ भूमि थी वो भी खराब हो जाती है, खेती के लिए वो अनुपयोगी हो जाती है। इन पर नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, एक तो वृक्षारोपण करके, दूसरा जो वाटर है पानी है उसको कहीं संग्रहित कर लें, यानी जो बहकर आने वाला पानी है उसकी मात्रा को कम करने के लिए करेंगे तो बाढ़ का जो जल स्तर है वो भी कम हो जाएगा, और जंगल को लगाएंगे यानी पेड़ों को लगाएंगे तो जंगलों का जो क्षेत्र अगर बढ़ाएंगे हम वृद्धि करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी को पौधे की जड़ें अब सोख लेती हैं और नीचे जाने में अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने में मदद करती हैं, तो उससे भी हमारा बाढ़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बांधों का निर्माण करने से भी पानी का भंडारण हो जाता है और जो बाढ़ के समय पानी जो व्यर्थ बहता है वो बहना कम हो जाता है, तो हम बांध का निर्माण भी कर सकते हैं, पानी को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे सप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर जगह पर बांध बने हुए हैं, और यदि हम बांध का जो पानी है, कई बार क्या होता है कि बांध का भी एक लेवल तक उसमें पानी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो उसे अचानक से अगर बारिश आ रही है बहुत भर गया है तो उसे भी निकालना पड़ता है, जो अनियंत्रित पानी जो छोड़ा जाता है उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नदी के किनारे और जो पाट है फट वो है उनको से गाद निकालकर उनको और गहरा करना चाहिए, टोटा को चौड़ा करें तो हम बाढ़ को, क्योंकि उसमें नदी में पानी भरने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं कि नियोजित ढंग से हम अगर इसका प्रबंधन तरीकों को अप्लाई करें तो बाढ़ से होने वाली जो क्षति है यानी जनमाल की जो हानि है वो रोकी जा सकती है, उसे कम किया जा सकता है। और ख़ास तौर से अगर हम फ्लड प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लें तो उससे हम उचित प्रबंधन कर पाएंगे, और जब उचित प्रबंधन होगा, क्योंकि हम चिन्हित कर लेंगे कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो उससे भी हम अपने बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार कहीं बारिश हो रही है और उसका पानी बहते बहते आएगा, या पानी कहीं से छोड़ रहे हैं तो पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचने में टाइम लगता है, तो वो हमें टाइम मिल जाता है कि अच्छा वहाँ पर है और इसमें इतना ही मिलेगा, तो उस समय हम लोगों को सूचना दे के पहले से बता के रखते हैं, तो कुछ और क्योंकि मौसम विशेषज्ञ और हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह के तंत्र का निर्माण किया है ताकि हम उसको बाढ़ की आने की सूचना पहले ही दे देते हैं पूर्वानुमान लगा के, और लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, सुरक्षित स्थानों में भेजने में आसानी रहती है। और इसके लिए भारत में काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और ये चेतावनी जो है केंद्रीय जल कमीशन और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के और जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी की जाती है, और भूमि उपयोग की योजना भी प्रबंधन में शामिल होती है। तो विकास की जो गतिविधियां हैं उनका उपयोग करना, गतिविधियों के लिए भूमि जरूरत है, भूमि के उपयोग की योजना का बहुत महत्व होता है, और हमें बाढ़ संभावित क्षेत्र में विकास के किसी भी प्रमुख कार्य को अनुमति नहीं देनी चाहिए कि ताकि वो अगर निर्माण कार्य वहाँ करते हैं और बहुत ही अनिवार्य कि उधर कंस्ट्रक्शन का काम जरूरी है, तो हमें ऊंचे स्थान पर ही किसी इमारत को बनाना चाहिए, और बाढ़ प्रतिरोधी बाढ़ की जो क्षमता शक्ति है उसको वो इमारत कितना झेल सकती है उसके हिसाब से वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ट्री प्लांटिंग को इनकरेज करना पड़ेगा, हमें वृक्ष कम काटने होंगे, वृक्षारोपण नहीं करें, पेड़ काटने से क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहेगा और साथ में मिट्टी भी ले जाएगा, मिट्टी भी बहा के ले जाता है तो हमारा सॉइल इरोजन भी होता है, और जब सॉइल इरोजन होता है मिट्टी बह के जा रही नदियों में जा रही है तो वहाँ पर गाद इकट्ठी हो जाती है जो कि मुख्य कारण है। तो नदियों में जो गाद है अगर जमेगी तो बाढ़ आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसे निर्माण कार्य की जिसके कारण जल निकास बाधित हो कभी भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये परमिशन नहीं देनी चाहिए। और अचानक आए जो पानी जब अचानक से आता है तो जो नालियाँ बनी हुई हैं उनके निकास को कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण ना हो, और इनसे अगर क्योंकि पानी आ भी रहा है अगर उसको निकलने का रास्ता मिलेगा तो वो सीधा निकल जाएगा, तो उससे भी बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। और कुछ अगर हम प्रायर इन्फॉर्मेशन के थ्रू करें तो शायद हमें बाढ़ के खतरे को और भी कम कर सकते हैं, जैसे घरों को बाढ़ से जो संभावित क्षेत्र है उनसे दूर बनाएं, मौसम की सूचना यानी बाढ़ आने के पूर्वानुमान को ध्यान के प्रति जागरूक रहें, और जैसे अगर बोला जाता है प्रशासन द्वारा कि इस जगह को खाली कर दीजिए बाढ़ का खतरा है, तो तुरंत ही हमें जो स्थान उपलब्ध कराए गए हैं वहाँ पर चले जाना चाहिए, और अपने वैल्यूएबल जो भी चीज़ें हैं उनको ऊंचाई स्थान पर रखना चाहिए ताकि वो पानी में डूबे नहीं, खराब ना हो, और इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे पास घर का राशन भी होना चाहिए, स्टॉक उसका रखना ज़रूरी है, और उस समय कोई भी तार हो उसको ना छुएं, बिजली के खुले अगर ढीले तार हैं, और अफवाहों को ना सुनें, उनसे बचें, कई बार अफवाहों के चलते भी ये और स्थिति सीवियर हो जाती है, खास तौर से बड़े और बच्चों का ध्यान रखें, और अगर जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है तो खुद का और अपने फैमिली मेंबर्स को मेडिकल एड जरूर दिलाएं, अगर कोई चोट लगी है तो भी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, और घर के आसपास जो भी गंदगी या कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है बाढ़ का पानी जब निकल जाता है तो उसे भी सफाई अवश्य करा दें। अब हम बात करते हैं सूखे की। सूखा क्या होता है, जब बारिश नहीं आती है या कोई भी ऋतु है और किसी भी का समय अगर हम देखें तो अगर आशा के अनुरूप यानी हमें जितना पानी बारिश के थ्रू चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो वो सूखा हो जाता है। यानी कम वर्षा होने से सभी को इफेक्ट होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, प्लांट है या एग्रीकल्चर है, सबको जल की ज़रूरत होती है। अब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई तो इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कम बारिश से जब क्या, अगर नहीं बारिश होती है तो नदियाँ भी तालाब जो हैं वो भी सूखने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है वो इफेक्टेड होती है और पानी की जब कमी रहेगी तो एग्रीकल्चर फसल नहीं उगेंगी हमारी। और यही सब चीज़ें हैं वो बताती हैं कि अगर पानी नहीं आया पर्याप्त मात्रा में, उपलब्ध नहीं हुआ तो वो सूखा का ही सूचक होता है। इसके कारण क्या है, वर्षा की कमी। अगर मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया कि इतना औसत है इससे अधिक होगा या तो ठीक है, अगर उससे कम हो जाता है तो वो सूखे का सूचक हो जाता है। और सूखे की जो भीषणता का अनुमान जो लगाते हैं वो साल भर की जो औसत वर्षा है यानी एक साल में जितना औसत बारिश होती है उसकी में होने वाली कमी से लगाया जाता है। और आज अगर हम देखें कुछ अनुमान, अगर देखेंगे पिछले कई सालों से अगर देखें तो वर्षा की मात्रा में कमी आई है और उसके चलते सूखे में वृद्धि हुई है। यानी कहीं कहीं किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो उससे खेती खराब हो जाती है और काफ़ी मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ता है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो मेनली कृषि पर पड़ रहा है। और उससे क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले फसल हमारी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है उस क्षेत्र की जहाँ पर ये सूखा पड़ रहा है। उसके बाद में देखें तो चरवाहे हो गए, जो मजदूर हैं खेतों में काम, जो निर्भर किसान हैं, फीमेल औरतें हैं, बच्चे हैं, फार्म के पशु हैं, वो भी इसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। फसल नहीं होने से क्या होता है, भोजन की कमी हो जाती है, उससे भुखमरी और कई बार मृत्यु के आसार भी हो जाते हैं। डेयरी उद्योग यानी दुग्ध उत्पादन हुआ, इमारती लकड़ी या मछलियाँ, तो वो प्रभावित होता है। बेरोजगार में वृद्धि होती है और जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कम हो जाता है। गहरे पानी वाले स्थानों में पानी को बाहर पंप के द्वारा फेंकने से ऊर्जा की हानि होती है, यानी और पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन कम होता है क्योंकि पानी कम है। बायोडाइवर्सिटी को क्षति होती है, लैंडस्केप की क्वालिटी में भी कमी आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं भी होती हैं। गरीबी में वृद्धि होती है क्योंकि जॉब नहीं मिलेगा, अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोग तो उस पर भी काम करते हैं, लाइफस्टाइल में भी का जो है वो भी लो हो जाता है और सामाजिक अशांति का कारण भी बनता है। लोग वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो भी मुश्किल होती है। इसका प्रबंधन किस तरह से करें कि यदि कुछ अगर हम उपाय ध्यान रखें तो सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। जैसे वर्षा का नियमित रिकॉर्ड रखें, जलाशयों और पानी के भंडारों को, नदियों के स्रोतों में जो पानी है वो की उपलब्धता है वो मांग के अनुपात में होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है। अगर मांग की तुलना में पानी कम मिलेगा तो पानी खत्म, अगर कम पानी आ रहा है तो कम का खपत करें, यानी हम जल संरक्षण का भी ध्यान रखें और उन तरीकों को अपनाएं जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। यानी इसमें हमको खुद को, जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसे बचाएं, कुशलता से और सावधानी से अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी को हम व्यर्थ होने से, बेकार होने से बचाएंगे। और प्रयोग जो एक बार यूज़ कर लिया तो पानी का अगर रीयूज़ करें तो उससे भी हमारे पानी का संरक्षण होगा। और सिंचाई और बुवाई के लिए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएं ताकि पानी की खपत उसमें भी कम होती है। वाटर हार्वेस्टिंग का हम प्रोविज़न करें कि पानी, जो बारिश का पानी है उसको भी हम बचा के रखें ताकि हमें जब हमारी कंडीशन एडवर्स कंडीशन हो, बारिश कम हो, तब उसका उपयोग कर पाएं। अब हम बात करते हैं भूकंप की यानी कि अर्थक्वेक की। क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह में कुछ हलचल होती है तो वो एक सूचक होता है कि भूकंप आने का। तो भूकंप क्या है कि पृथ्वी की सतह की जो डिफॉर्म यानी अपक्रत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा है उसका अचानक से बाहर निकलना, ये भूकंप होता है। यानी अचानक निकलने वाली जो ऊर्जा है उससे क्या होता है, अचानक से निकल रही है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी कांप जाती है और भूकंप वर्ष में किसी भी समय कभी भी आ सकता है, बिना चेतावनी के आता है, इसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें क्या होता है कि अनप्रडिक्टेबल है, तो जान और माल दोनों की हानि काफी होती है। जैसे हमने पहले ही बात किया था कि 93 में लातूर का, या 2002 में जब भुज में भूकंप आए थे, उसकी त्रासदी सारे सब लोग ने सब जानते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता है उसका अनुमान लगाया जाता है जो ऊर्जा उससे निकली है, यानी कि जब धरती के भीतर जो चट्टाने हैं, भीतर छिपी हुई ताकत जो है चट्टानों के बीच से बाहर निकलती है जब वो रगड़ लगता है। और इसको हम एक यंत्र जैसे कि हम भूकंप लेखी या सीज्मोग्राफ कहते हैं, उससे मापते हैं। और इसकी जो भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वो रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। और रिक्टर स्केल जो इसके आविष्कारक थे CF रिक्टर के नाम पर ही रखा गया है। और इसमें किस तरह से नापते हैं, अगर उस स्केल पर तीव्रता 3 तक है तो आपको सिर्फ झटके महसूस होते हैं, कहीं कोई क्षति नहीं होती है। अगर उस स्केल पर उसकी तीव्रता जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता अगर 3 to 5 है तो पुरानी इमारतों में, नई इमारतों में नहीं पुरानी में, थोड़ी दरार आती है। और 5 से 7 अगर इंटेंसिटी का ये भूकंप आएगा तो सड़कों में भी दरार आ जाती है। और अगर 8 से ऊपर का है तो जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है या भवन है वो तक भरभराकर एकदम गिर सकते हैं। और इसका कारण हमने जैसे बात किया कि जो पृथ्वी द्वारा जो ऊर्जा के निष्कासन द्वारा, जो कि एक प्राकृतिक ढंग है, वो भूकंप कहलाता है। और भूकंप पृथ्वी के उन हिस्सों में ही आता है जहाँ पर भू विज्ञान से संबंधित कुछ त्रुटियां होती हैं, और ऐसे क्षेत्रों की जो भूकंप प्रोन मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को पहले ही हम चिन्हित कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यहाँ पर भूकंप की संभावना ज़्यादा है। अब इसके प्रभाव क्या हैं कि संरचनात्मक क्षति होती है, यानी इमारतों को हानि होती है, जैसे हम बात कर चुके हैं। भूकंप के द्वारा हमारी सड़कें हैं, भवन हैं, बांध है, स्मारक है, बहुत क्षति हो सकती है। ऊंची ऊंची इमारतें या ऐसी इमारतें जिनकी नींव कमज़ोर है उनको विशेष रूप से भूकंप के दौरान क्षति होती है। घरेलू उपकरण हो गए, जैसे खासतौर से बिजली के उपकरण हो गए या फिर फर्नीचर हो गया, इनकी भी क्षति होती है। मानव और पशुधन यानी जो भी है उनके जीवन की क्षति हो सकती है। या फिर इमारतों के गिरने से क्या होता है, गंभीर चोट भी आ सकती है। और जब भूकंप जैसे बाढ़ के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे रह जाते हैं, उसी तरह भूकंप के बाद भी हमारे पास जैसे हैजा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या संक्रमण से फैलने वाली महामारियां भी मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मलबे में जब दब जाते हैं, कुछ लोग तो निकाल पाते हैं, नहीं तो अगर नहीं वो निकलते वो वहीं रहते हैं, तो वहाँ पर वो उनकी बॉडी डिटोरिएट होती है और वो एटमोसफेयर में जो फैलता है तो उससे, और क्योंकि जब भूकंप आ रहा है तो आपकी वाटर सप्लाई जो पाइपलाइन है या इलेक्ट्रिसिटी का है, या आपका टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, संचार की लाइनें हैं, पावर की लाइनें हैं, परिवहन नेटवर्क है, इन सब और रेल मार्ग है, ये भी सारे सुविधाएं जो है हम उपयोग करते हैं ये भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इनका प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, प्रबंधन क्योंकि प्राकृतिक घटना है हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ उसका प्रबंधन कर सकते हैं कि कैसे, कि भवनों का डिज़ाइन उस तरह से करें कि वो भूकंप के झटकों को सहन कर पाए। खास तौर से जो भूकंप संभावित क्षेत्र है वहाँ पर विशेष ध्यान रखना होता है, और मिट्टी की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनका एनालिसिस करने के बाद ही कि वो उस वाले एरिया में भूकंप को सहने की कितनी क्षमता है उसका भी हमें एक अनुमान लगाना जरूरी है, परीक्षण करवाना जरूरी है। और इसी को देखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भवन निर्माण के लिए कुछ रूपरेखा आउटलाइंस तैयार किए हैं, गाइडलाइंस तैयार किए हैं, जो कि अगर हम जा रहे हैं भवन निर्माण के लिए तो उनको हमें उस क्राइटेरिया को हमें मानना होगा। और इसके लिए जो संबंधित नगर निगम के अधिकारी हैं वही डिजाइन इमारतों के भवन के नक्शे पास करते हैं, जो और उसी के हिसाब से कि ये सुरक्षा जो भी नियम हम बता रहे हैं उसी के हिसाब से आप अपने भवन को डिजाइन करें, तभी अगर वो सारे नॉर्म्स और क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी वहां पर वो उसको परमिशन मिलती है कि ये बिल्डिंग इस जगह पर बन सकती है। बिल्डर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, जो लैंड लॉर्ड है या ओनर है मकान का, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें शामिल होते हैं कि किस तरह से ये भवन बने, उनको सबको ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो जाता है। अब भूकंप बात करते हैं कुछ सावधानियों की, अगर हम लें, अगर भूकंप आ गया है और हम उधर फंसे हुए हैं तो क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कि कोशिश करें कि खुले स्थान में निकल जाएं और शांति बनाए रखें, घबरा कर इधर आना था पैनिक ना हो, लिफ्ट का प्रयोग और कभी ना करें खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि ग्लास वगैरह या फर्नीचर से शीशों, क्योंकि कहीं कुछ भी टूट सकता है, उससे दूर रहें, और कोशिश करें कि किसी बीम के नीचे खड़े हों क्योंकि वो गिरेगी नहीं, या फिर आप टेबल वगैरह के नीचे छुप सकते हैं। अगर आप कहीं हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किसी ऊंची इमारत में खड़े हैं तो और अपने स्थान से हट नहीं सकते हैं, तो उसी जगह पर आप अपने शरीर को, अपने सिर को बचाकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उससे आपको कोई चोट ना लग जाए, इसीलिए ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं तो कोशिश करिए कि लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, और ना ही उनकी तरफ दौड़ें और ना ही उतरें। यदि अगर रास्ते में हो और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपकी व्हीकल है उसको कोई इमारत है या फिर पुल है, दीवार है, पेड़ है, बिजली के खंभे हैं, उनसे बचाकर कहीं दूरी खड़ी रहने दें, और जो कुछ क्षति हुई है उसको देखें कि जब भूकंप चला गया उसके बाद देखें, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको साफ करने की कोशिश करें। चोट आदि को देखें, अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है और आपको भी और दूसरे लोगों को भी आप वो कर सकते हैं, उनको भी मदद दिलाएं, मदद करें उनके लिए। और अगर आपका घर कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो घर से तुरंत बाहर निकलें, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अपने पास रखें, जैसे खाना पीना हो गया, फर्स्ट एड का है, क्या टॉर्च है, मेडिसिन है, मोमबत्ती है, माचिस है, इस तरह के जो भी संभव है वो साथ में ले लें। और इमारतें खासतौर से पुरानी और जो ऊंची इमारतें हैं उनसे, बिजली के खंभों से, तारों से और दीवारों से दूर रहें। अब हम बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या होते हैं? ये बहुत ही वाइल्ड तूफान होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, और ये एक तरह की कह सकते हैं तेज और उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो कि निम्न वायुमंडलीय दबाव के शांत क्षेत्र केंद्र से के चारों ओर घूमती हैं तीव्रता के साथ, और ये शांत केंद्र है वो प्रायः आगे बढ़ता है, और कभी कभी इनका जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आर के हिसाब से होती है, और अचानक ही ये आते हैं, जबकि इनके बनने में काफ़ी समय लगता है। और चक्रवात के बाद बहुत तेज बारिश होती है जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है, और सैटेलाइट द्वारा इनके जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका अनुमान लगाया जाता है, और मैसेज दिए जाते हैं कि संभावित जो ये इस एरिया में आएगा तो वहाँ के निवासियों को चेतावनी भी देते हैं, और ताकि वो किसी सेफ स्थान पर चले जाएं। इनके प्रभाव क्या होते हैं? हल्के भार वाले मिट्टी लकड़ी के निर्माण, पुरानी इमारतें जिनका ढांचा दीवारें कमज़ोर हो चुकी हों, नींव की पकड़ मजबूत नहीं है, वहाँ पर यह खतरा हो सकता है। और जो समुद्री तट हैं वहाँ पर जो निचले क्षेत्र हैं वो काफ़ी प्रोन होते हैं इसके चक्रवात के लिए, और जो समीपवर्ती जो बाढ़ क्षेत्र बसे क्षेत्र हैं वो मडस्लाइड और भूस्खलन आदि के कारण जल्दी प्रभावित होते हैं। और इसमें भी टेलीफोन की वायर हैं, लाइट के खंभे हैं, बिजली के खंभे और दीवारें हैं, पेड़ हैं, मछली पकड़ने की जो नावें हैं, साइन बोर्ड हैं, वो भी चक्रवात आने से काफ़ी खतरे में पड़ जाते हैं, उससे खतरा बढ़ जाता है। हल्की इमारतें ढांचे जैसे फूस की झोपड़ी है वो भी उड़ जाते हैं, टिन के छप्पर जो छत होती हैं उनके ऊपर वो भी उड़कर कहीं और जाके किसी दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। चक्रवात में क्योंकि तूफानी हवाएं चलती हैं और जो लहरें हैं वो समुद्री लहरें भूमि जमीन को टच करती है, भूमि पे पहुंच जाती हैं, और इससे बाढ़ आ जाती है, वहाँ के उस क्षेत्र की मिट्टी खराब हो जाती है, पानी में खारापन आ जाता है, और पानी की आपूर्ति और कृषि की फसल, अगर जो खेती हो रही है वहाँ पर, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा ये है कि इसके जो चक्रवात संभावित क्षेत्र हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। चक्रवात संभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जैसे अर्थक्वेक के लिए बात की गई थी। ऐसी इमारतें बननी चाहिए जो हवा और बाढ़ के जो तीव्रता है उसको झेल पाए, और किसी भी ढांचे की पकड़ रखने वाले तत्व जो मजबूती से मिट्टी में जमीन में गड़े होने चाहिए ताकि वो अपने ऊपर टिके हुए उस ढांचे को मजबूती से संभाल पाए। और अगर आवश्यक हो तो समुद्र तट के किनारे किनारे ग्रीन बेल्ट का विकसित करना अति जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी क्या है? मोस्टली सेस्मिक समुद्री लहरें या जारभटा के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रायः क्या होता है, अंतर समुद्री भूकंप के कारण आती है, जो समुद्र की सतह के नीचे 50 किलोमीटर से कम दूरी पर उठता है और इसका जो तीव्रता है वो रिक्टर पैमाने पर 6.5 से अधिक होती है। पानी के नीचे या तट पर लैंडस्लाइड या वॉल्केनिक इरप्शन के से भी सुनामी आ सकती है और ऐसी लहरों के लिए प्रायः ज्वारभाटा जैसे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं, परंतु ये इनका कोई ज्वारभाटा से कोई संबंध नहीं है। सुनामी की जो लहरें हैं वो सीधी हैं, क्रमिक हैं, अनिश्चित रूप से घटती बढ़ती समुद्री लहरें समुद्र की सतह पर बहुत दूर तक पैदा हो जाती हैं ये, और ये चौड़े होते हुए घेरे के रूप में होती हैं और कुछ ऐसे जैसे कि हम किसी तालाब में कंकड़ मारते हैं तो वो जो गोल गोल सर्कल बनते हैं उस तरह की होती हैं। इसमें सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना बहुत ही व्यवहारिक महत्व रखता है। भूकंप वैज्ञानिक संभावित खतरे की जानकारी तुरंत ही दे देते हैं, जैसे कोई इस तरह की हलचल होती है, भूकंप आता है, तभी दे देते हैं चेतावनी कि सुनामी भी आ सकती है और उसको उससे घंटों पहले ही लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। ये लहरें जो होती हैं धीरे धीरे महाद्वीपीय तटों की ओर बढ़ती हैं और उनका तल है वो उथला होता जाता है, जिस पर लहरों के संघर्षण से लहरों की तीव्रता और वेग को कम किया जाता है। वेग कम होने के कारण जो लहरों की ऊंचाई वो 50 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है और 3 से 5 मुख्य अनिश्चित दोलन लहरों के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। फिर भी सुनामी का प्रभाव जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग देखा जाता है। प्रभाव क्या है कि सुनामी के दुष्प्रभाव जो हैं वो भी चक्रवात और बाढ़ के जैसे ही हैं और समुद्री पानी की बड़ी लहरें तीव्र वेग से अंदर घुस जाती हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है, जैसे कि बस्तियां हैं, फसलें और दूसरे अन्य जो संपत्ति बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल 2004 की सुनामी है जिसने कि अनेक देशों में जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत में भीषण विनाश किया था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय जिलों का है उनका बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था और 8 एशियाई देशों में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो कितना सीवियर थी ये सुनामी और इसके जो प्रबंधन है वो इसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए जिस तरह से प्रिकॉशन चक्रवात के लिए यानी साइक्लोन के लिए और बाढ़ के लिए जाती है उसी तरह से हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। आज हमने बात की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कि क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। धन्यवाद।